हाय लिसनर, अगर आपको हमारा शो ऑल अबाउट इंडिया इनसाइडर टेल्स अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हम निरंतर नई और दिलचस्प कहानियां प्रस्तुत करते रहें, तो कृपया patreon.com/allaboutindiapodcast या patreon.com/learnhindiontheGo पर एक छोटा सा अनुदान देकर पेट्रन बनने के बारे में विचार करें।
आपके द्वारा दिया गया हर अंशदान हमारी सहायता करता है और हमारे लिए भारत से जुड़ी रोचक कहानियां आप तक पहुंचाना संभव करता है।
यह हमारी पॉडकास्ट सीरीज ऑल अबाउट इंडिया इनसाइडर टेल्स का एपिसोड 12 है। मेरा नाम श्रद्धा है और मेरे साथ रितांश और जयबोध हैं। इस एपिसोड में आप एक दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि चीनी चाय के निर्यात, अंग्रेजों द्वारा हांगकांग हथियाने और भारत में उगाई जाने वाली अफीम के बीच क्या संबंध थे।
अगर आप अंत तक हमसे जुड़े रहें तो आप इस एपिसोड में इस्तेमाल हुए एक उपयोगी एक्सप्रेशन के प्रयोग को सीख सकते हैं।
यदि आप चाहें तो इस एपिसोड का अंग्रेजी अनुवाद भी सुन सकते हैं
और आप patreon.com/allaboutindiapodcast या patreon.com/learnhindiontheGo से इस एपिसोड की ट्रांसक्रिप्ट मीनिंग के साथ और इस पर आधारित वर्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं।
हमारे स्कूल से ऑनलाइन हिंदी सीखने के लिए मुफ्त ट्रायल लेने हेतु स्कूल की वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक एपिसोड के वर्णन में है। वह सूखी जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें उन सूखे हुए डंठलों पर जमी हुई थी जिनसे उसे कभी बहुत उम्मीदें थीं और जिन पर उसे कभी गर्व था। उसने जमींदार की बातों पर भरोसा करते हुए इस खास फसल को उगाया था। जमींदार ने उसे इस फसल की अच्छी कीमत मिलने और इसकी लगातार बिक्री का वादा किया था। उसने यह फसल उगाने के लिए जमींदार से पैसे उधार लिए थे। जमींदार ने ही उसे बीज दिए थे। जमींदार ने जमानत के तौर पर उसकी जमीन रहन पर रख ली थी। किसान ने अपनी हैसियत से ज्यादा की कीमत की खाद और कीटनाशक खरीदे थे। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उसे पता था कि अपना बकाया चुकाने के बाद अगली फसल तक उसके पास अपने परिवार और बुजुर्ग माता पिता को खिलाने के लिए बहुत कम पैसे बचेंगे।
उसे पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ना तो वह कर्ज चुका सकता था और न ही वह दूसरी फसल उगा सकता था और न ही वह जमीन छोड़ सकता था। वह शोषण और दुख के एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया था जिससे निकलने का उसके पास कोई रास्ता न था। वह अपनी बेवकूफी और दलाल और जमींदार के जाल में फंसने के लिए अपने आप को कोस रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने वह खास फसल न देखी होती और न ही झूठे वादों पर भरोसा किया होता। वह सोच रहा था कि काश उसने पुरानी खेती को ही जारी रखा होता और वह अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए पहले की तरह फसल उगाता रहता।
लेकिन पछतावे के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना रास्ता चुन लिया था और उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा था। इस फसल को उगाने से इनकार करने पर निश्चित रूप से उसका अपहरण कर लिया जाता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, उसकी फसल नष्ट कर दी जाती या उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता और उसे जेल हो जाती।
वह इस बंधन से मुक्त होना चाहता था, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह इस क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का शिकार था और वह खुद को इसमें बंदी और गुलाम सा पाता था। वह सोच रहा था कि क्या उसके और उसके परिवार के लिए कोई आशा भी बची थी, या क्या इस नारकीय स्थिति में उसका अंत होना तय था। उसने ईश्वर से दया और मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं मिला। वह इस अंधेरी और निराशा से भरी दुनिया में अपने आप को अकेला और निस्सहाय महसूस कर रहा था।
वह अफीम की खेती करने वाला एक भारतीय किसान था, जिसे ब्रिटिश एजेंटों ने झूठे वादे करके अफीम के व्यापार में धकेल दिया था। भारतीय अफीम की खेती करने वाले इस किसान को यह नहीं पता था कि उसके और अन्य भारतीय किसानों द्वारा उगाई गई अफीम चीनी लोगों के लिए भी अत्यधिक दुख और दर्द का कारण बन रही थी।
ब्रिटिश उपनिवेशवादी तब न सिर्फ भारतीय अफीम के किसानों का शोषण कर रहे थे, बल्कि लाखों चीनियों को उन्होंने अफीम की लत लगा दी थी। यह सब लालची ब्रिटिश उपनिवेशवादी सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए कर रहे थे।
18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे वाले बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे भारतीय राज्यों में अफीम की खेती शुरू करवा दी थी। उन्होंने अफीम की खेती चीन से आयात होने वाली चाय को फाइनेंस करने के लिए शुरू करवाई थी।
17वीं शताब्दी में अंग्रेजों का चीन में उगाई जाने वाली चाय से पहली बार परिचय हुआ था, लेकिन जल्द ही अंग्रेज चाय के दीवाने हो गए और फिर बियर को पीछे छोड़कर चाय ब्रिटेन का सबसे पसंदीदा पेय बन गई।
लेकिन चाय तब बहुत महंगी थी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चाय का निर्यात एक बहुत लाभदायक व्यवसाय था। कंपनी चीन से चाय खरीदती थी, जो उस समय एकमात्र चाय का उत्पादन करने वाला देश था। इसके बाद कंपनी चाय को ब्रिटेन में लाकर इसे बहुत ऊंचे दाम पर बेचती थी।
लेकिन चीनी लोग तब चाय के बदले में केवल चांदी को ही स्वीकार करते थे और वे कोई ब्रिटिश सामान नहीं खरीदते थे।
इससे अंग्रेजों के सामने भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या पैदा हो गई। एंग्लो डच युद्धों के कारण अंग्रेजों के संसाधन खत्म हो गए। इसके परिणाम स्वरूप चांदी का भुगतान करना अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चाय के व्यापार के लिए चीनियों को देने हेतु चांदी जुटाना लगभग असंभव सा हो गया था। अंग्रेजों ने अपनी इस समस्या का हल भारतीय अफीम की चीन में तस्करी करके निकाला।
18वीं सदी में लाखों चीनी लोगों को अफीम की लत थी। भारतीय राज्य बंगाल के शासक होने की वजह से अंग्रेजों को पता था बंगाल और कुछ अन्य भारतीय राज्यों की मिट्टी अफीम की खेती के लिए उपयुक्त थी।
वे भारतीय किसानों को अफीम उगाने के लिए मजबूर करते थे। फिर वे भारतीय अफीम को चीन के कैंटोन शहर के मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित अपने गोदामों में ले जाते और फिर इसे चीनी तस्करों को बेच देते थे। अफीम की तस्करी से उन्हें जो चांदी और सोना मिलता था, उसका उपयोग वे चीनी चाय को खरीदने में करते थे और फिर इसी चाय को वे यूरोप में मुनाफे पर बेचते थे।
जहां एक ओर अफीम की तस्करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत थी, वहीं दूसरी ओर अफीम के कारोबार के लिए लगभग 1 करोड़ भारतीय किसानों और मजदूरों का अत्यधिक शोषण होता था। अफीम की खेती ने भारतीय किसानों को और अधिक गरीबी की ओर धकेल दिया और उनके जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था।
अफीम का उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ओपियम एजेंसी बनाई थी। इसके 100 दफ्तर थे, जिनमें 2,500 क्लर्क काम करते थे। इस एजेंसी ने कड़े उत्पादन लक्ष्य तय किए थे और यह एजेंसी अनुबंध को लागू करने और गुणवत्ता कायम करने के लिए अफीम की खेती करने वाले किसानों पर निगरानी रखती थी।
एजेंसी के अधिकारी और स्थानीय जमींदार किसानों को अफीम उगाने के लिए मजबूर करते थे। एजेंसी के अधिकारियों के पास पुलिस के जैसी शक्तियां थी, इसलिए अगर किसान फसल उगाने से इनकार करते तो अधिकारी किसानों को अपहरण करने, गिरफ्तार करने, उनकी फसल नष्ट करने तथा उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने आदि की धमकियां देते थे।
इस फलते फूलते अंग्रेजी राज्य द्वारा संचालित वैश्विक व्यापार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। अफीम का निर्यात जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रति वर्ष 4000 पेटियों का था, वह 19वीं शताब्दी का अंत आते आते बढ़कर 60,000 पेटियों से अधिक का हो गया था।
1839 में चीनी सरकार ने अफीम की लत को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। चीनियों ने कैंटोन और गुआंजो में ब्रिटिश व्यापारियों के गोदामों में जमा अफीम की 20,000 से अधिक पेटियों को जब्त करके उन्हें नष्ट कर दिया।
चीनी सरकार की इस कार्यवाही का बदला लेने हेतु 1840 में ब्रिटिश सरकार ने चीन के तटीय शहरों पर हमला करने के लिए अपने युद्धपोत भेजे। ब्रिटिश आक्रमण महीनों तक चलता रहा और चीनियों के जवाबी हमले के बावजूद अंग्रेजों ने चीनी शहर नानजिंग पर कब्जा कर लिया। 1842 की अगस्त में चीनियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और अंग्रेजों ने युद्ध समाप्त कर दिया। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार चीन को ब्रिटेन को एक बड़ा मुआवजा और हांगकांग द्वीप को 100 साल की लीज पर देने के लिए मजबूर किया गया था।
चीन के खिलाफ दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 तक चला, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर लड़ा था। इसमें भी यूरोपीय सेना की आधुनिक सैन्य तकनीक के कारण चीनी सेना की हार हुई। इस युद्ध के बाद चीनी सरकार को अफीम व्यापार को वैध बनाने के लिए मजबूर किया गया।
1915 में चीन के साथ अफीम व्यापार तब जाकर खत्म हुआ जब चीनी सरकार चीनियों की अफीम के सेवन की लत पर काबू पाने में सफल हुई। इसके बाद ही भारतीय किसानों को अफीम की दास्ता से मुक्ति मिली और वे अफीम के अलावा दूसरी फसलें उगाने के लिए स्वतंत्र हो पाए। जयबोध, क्या आप हमें अफीम सेवन से संबंधित एक प्राचीन भारतीय परंपरा के बारे में बता सकते हैं?
हाँ, क्यों नहीं। भारत के राजस्थान राज्य के पश्चिमी हिस्से में डोडा पोस्त परोसने की सदियों पुरानी परंपरा रही है। यह एक पेय है जो अफीम का दूध या खसखस निकालने के बाद बचे हुए भूसे से बनाया जाता है। इस डोडा पोस्त देने की प्रथा को रियाण कहा जाता है। यह प्रथा सामाजिक समारोहों जैसे जन्म, सगाई, शादी या मृत्यु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यह दोस्ती करने और दुश्मनी खत्म करने में भी मदद करती है। इस प्रथा में मेजबान अतिथि से दोस्ती मजबूत करने के लिए अपनी हथेली पर रखी पानी में घुली हुई थोड़ी सी अफीम को चाटने का आग्रह करता है। ऐसे समारोहों में अफीम का सेवन न करना मेजबान का अपमान माना जाता है। हालांकि इस तरह के समारोहों में अफीम ली जाती है, लेकिन आजकल अफीम की खेती करना, इसे रखना और इसका व्यापार करना गैरकानूनी है।
क्यों ना हम अब इस एपिसोड में इस्तेमाल हुए एक एक्सप्रेशन को दोहराएं और उसका उपयोग सिखाएं।
हाँ, यह एक अच्छा विचार है। Someone to be addicted to something is translated as किसी को किसी की लत होना। मैं दोहराती हूँ, किसी को किसी की लत होना।
इसका एक उदाहरण, उसे धूम्रपान की लत है। मैं दोहराता हूं, उसे धूम्रपान की लत है। Which means he is addicted to smoking or she is addicted to smoking.
When talking about a male, to be used to doing something or to be accustomed to doing something is translated as kuch karne ka aadi hona. Main dohrati hoon, kuch karne ka aadi hona.
Iska ek udaharan, vah subah jaldi uthne ka aadi hai. Main dohrata hoon, vah subah jaldi uthne ka aadi hai. Which means he is accustomed to getting up early in the morning.
Now let's give the listener a quiz. Listener, we'll give you several sentences followed with brief pauses for you to translate those sentences into Hindi.
And I'll translate the sentences after you. Ready? Here we go.
Someone to be addicted to doing something is translated as किसी को कुछ करने की लत होना। I'll repeat, किसी को कुछ करने की लत होना। To drink alcohol is translated as शराब पीना। I'll repeat, शराब पीना। Here is the first sentence for you to translate. Is he addicted to drinking alcohol or is she addicted to drinking alcohol?
क्या उसे शराब पीने की लत है? I'll say it again slowly. Just repeat it with me. क्या उसे शराब पीने की लत है?
When addressing a female to be accustomed to doing something is translated as कुछ करने की आदि होना. To sleep early at night or to go to bed early at night is translated as रात को जल्दी सोना. Here you are informally addressing a female. Here is the second sentence for you. Are you accustomed to going to bed early at night?
क्या तुम रात को जल्दी सोने की आदि हो? I'll say it again slowly. Just repeat it with me. क्या तुम रात को जल्दी सोने की आदि हो?
हमें आशा है कि आपको यह पॉडकास्ट सुनने में आनंद आया होगा. क्या आपको पता है कि हमारा एक फेसबुक पेज है? इस पेज पर हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिस पर श्रोतागण अपनी कहानियां और ट्रैवल ट्रिप्स शेयर कर सकते हैं. इस पेज से जुड़ें, इसका लिंक एपिसोड के वर्णन में है.
हमारे शो को iTunes, Stitcher, Spotify और RSS पर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई शो मिस ना हो. आप इस शो को iTunes, Spotify पर रेटिंग दे सकते हैं.
आप पेट्रियन पर पेट्रन बनकर हमारा सहयोग भी कर सकते हैं. नमस्ते.